ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की और खुशी की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय शिवानी बहन जी आ चुके। शिवानी बहन जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब ने शिवानी बहन को बहुत बार सुना और शायद में क्या वर्ल्ड में ऐसा परिवार होगा जिसने शिवानी बहन को सुना ना हो। मैं दो मिनट में शिवानी बहन का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। शिवानी बहन का जन्म पुणे में हुआ था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बाद में इन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया और आपने दो सारे कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी कार्य किया। उसके बाद आपने एक अपनी अलग से सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाई और पिछले 20 साल फुल टाइम ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर आध्यात्मिक सेवाएं पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आपने 35 से ज्यादा देशों में जाकर अध्यात्म के ऊपर व्याख्यान किए हैं और आपको एक स्पेशल ब्लेसिंग्स है ऑलमाइटी शिव बाबा की कि आप कितनी भी जीवन की जो जटिल समस्याएं हैं उनको बड़े आसान शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में उनको आप हल कर पाते हैं। और आपकी इस एक खास टैलेंट की वजह से हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियां संवर रही हैं और संवरती जा रही हैं। बहन जी के इन प्रयासों के फलस्वरूप इनको काफी अवार्ड से नवाजा गया है। इनको 2014 में वुमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है। बहन जी को 2019 में भारत के राष्ट्रपति की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, जो हमारे देश में किसी भी महिला को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। बहन जी को वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की तरफ से 2017 में अपना ब्रांड एम्बेसडर का भी के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। तो बहन जी को पूरे देश में आज हर परिवार किसी न किसी छोटी मोटी चीजों से गुजर रहा है और ये एक, मैं कहता हूं, एक एंजल है हमारे बीच में जो हर प्रकार की समस्याओं को अपने सिंपल शब्दों के द्वारा हल कर देती है और हर चीज का हमको एक रास्ता आसान मिल जाता है, जिंदगी खुशहाल बन जाती है, जिंदगी सफल बन जाती है। मैं समय ना लेते हुए शिवानी बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वचनों से हमको कृतार्थ करें। थैंक यू बहन जी।
ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे एक मिनट और जैसे हम देश की रक्षा के लिए हर रोज ड्रिल करते हैं ताकि हमारा मन और शरीर कैसा रहे, एकदम एवर रेडी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए आप रोज ड्रिल करते हैं। ऐसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए और मन को जिस क्षण जहां टिकना है वहां कितनी देर वहां से टिकना है, और ऐसी ड्रिल करने से हमारे मन में जो चलने वाली थॉट्स होती हैं उसके ऊपर हमारा संयम आ जाता है। एंड जब मन के स्पीड पर संयम आ जाता है तो मन की थॉट्स की क्वालिटी भी चेंज होने लगती है। तो आप सब ने कल सीखा कि शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। तो वो एक पीस ऑफ नॉलेज है, लेकिन अब उस नॉलेज को हमें प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है और उसके लिए दिन में कई बार चलते फिरते एक सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे आधे मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे एक मिनट के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। और वो ये कि यहाँ ब्रिकुटी के बीच विजुअलाइज करें सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सिर्फ उसको पकड़ना है वहां, उसको देखना है वहां। किसको देख रहे हैं हम? मैं आत्मा शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो देखना है। और फिर कोई भी एक थॉट क्रिएट करनी है। लेट्स से हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो वन थॉट क्रिएट करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे कि उस वन थॉट को होल्ड करेंगे. इजी राइट? तो हमने देखा कल कि आत्मा की कौन सी क्वालिटीज हैं. 7 क्वालिटीज कौन सी देखी कल? कौन सी है? ये कभी भूलनी नहीं है, ये कभी भूलनी नहीं है. जैसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं भूलते, अपने एसेट्स नहीं भूलते, ऐसे ही अपनी क्वालिटीज भी नहीं भूलनी है. क्योंकि अपनी क्वालिटीज पता होंगी तभी तो वो कर्म में आएंगे. जैसे मेरे पास क्या है, कितना पैसा है, कितने धन है, वो पता होगा तभी तो उसको काम में लगाएंगे. नहीं तो पता ही नहीं होगा, परिस्थिति आएगी तो हमें तो पता ही नहीं होगा हमारे पास है या नहीं है. इसी तरह मेरे कौन से संस्कार हैं ये पता होना चाहिए. तो पहला संस्कार, 7 थे ना कल, पहला संस्कार प्योरिटी. मैं कौन सी आत्मा हूँ? प्योर सोल, पवित्र आत्मा हूँ. और पवित्र आत्मा का मीनिंग क्या? हर थॉट बहुत क्लीन, हर इंटेंशन क्लीन, कुछ भी दाग नहीं, कोई मैल नहीं, बिल्कुल स्वच्छ. और जितनी प्योर होगी उतनी वो सेल्फलेस होने लग जाएगी, निस्वार्थ होने लग जाएगी. उसमें स्व अर्थ किसी को कुछ नहीं चाहिए होगा. दूसरा गुण कौन सा था? फर्स्ट प्योरिटी, सेकंड पीस. आई एम अ पीसफुल सोल. तो कोई भी एक संस्कार को लेना है, उसकी एक थॉट क्रिएट करनी है और फिर उसको होल्ड करना है. ठीक है? तो आप प्योरिटी ले लें, आप पीस ले लें, आप पावर ले लें, आप हैप्पीनेस ले लें, आप लव ले लें, आप ब्लिस ले लें. 7 गुणों में से कोई भी एक गुण ले और उसको पकड़ना है. कल के देखें, अभी करके देखेंगे. हाँ, सीधा बैठेंगे, रिलैक्स्ड बैठेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे कि हमें आंखें बंद नहीं करनी पड़ेंगी. क्यों नहीं करनी आंखें बंद? क्योंकि हमें इसको कभी भी कहीं भी करना है, कभी भी कहीं भी करना है. हम कितने लोगों को याद करते हैं, उसके लिए आंखें बंद नहीं करते हैं. तो फिर इसके लिए भी आंखें बंद नहीं करनी पड़ती हैं. बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रिंग योर अटेंशन ब्रिकुटी के बीच लेकर आए और सिर्फ विजुअलाइज करना है जहां तिलक लगाते हैं. एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जहां तिलक लगाते हैं, उसी पॉइंट पर देखना है एक चमकता हुआ सितारा. बस होल्ड करें उसको. देखते रहना है ब्रिकुटी के बीच, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति. अब एक संस्कार को इमर्ज करते हैं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं. आई एम अ प्योर सोल. तो बस इसे थॉट को क्रिएट करें और उसको होल्ड करें. मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं. मन ने होल्ड करना है इसको. अगर मन कुछ और सोचना शुरू करे तो तुरंत रिपीट करना, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं. अब सिर्फ सोचना नहीं है, देखना भी है. Center of the forehead, point of light. मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं. ओम शांति। ओके, ये इजी है करना, ये इजी है करना। यस, कौन कौन कर पाया? इजी है ना? बहुत इजी है, बस इसको करते रहना है। जाने के बाद आत्मा के 7 संस्कार हैं, लेकिन अगर हम आज दुनिया में देखें तो हम इसके ऑपोजिट संस्कारों में जी रहे हैं, राइट? और उन ऑपोजिट संस्कारों को हमने नॉर्मल भी बोल दिया है। दुनिया में कहते हैं शांति चाहिए, और परमात्मा सिखाते मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दोनों बातों में कितना फर्क है? दोनों बातों में कितना फर्क है? एक है आई वॉन्ट, दूसरा है आई एम। एंड इफ आई एम, तो फिर मुझे क्या करना है? सिर्फ अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और हर एक आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, फिर लोग क्यों बोल रहे हैं शांति चाहिए? ऐसा क्यों हुआ? है शांत स्वरूप लेकिन बोलते हैं शांति चाहिए, है सुख स्वरूप लेकिन बोलते हैं खुशी चाहिए, है प्यार स्वरूप लेकिन कहते प्यार चाहिए। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाओ, किस किस को खुशी चाहिए और किस किस को शांति भी चाहिए और किस किस को प्यार भी चाहिए? ओहो, हम अभी तक चाहिए बोलेंगे तो कैसे होगा फिर हमारा, है ना? अब आज से कभी नहीं बोलना, बोलो चाहिए नहीं, मैं हूं। क्यों हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं अपने संस्कारों को? कोई चीज मेरे पास है लेकिन उसका एक्सपीरियंस मुझे तभी होगा जब हम उसको यूज करेंगे। यूज ही नहीं किया तो फिर उसका एक्सपीरियंस क्या है? वो है या नहीं है, वो एक बराबर है। है लेकिन उसको यूज नहीं किया तो उसका होने का कोई अनुभव नहीं होगा। तो सारा दिन में क्या हुआ? बातें आई, सिचुएशंस आई, लोगों ने अलग अलग तरह से बिहेव किया, लेकिन किसी ने हमें सिखाया नहीं है कि परिस्थिति कुछ भी आए, हमने जो सोचना है, हमने जो बोलना है, हमने जो करना है, उसका कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है। हमें चूज करना है कि कैसे सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, लेकिन वो चूज करने की प्रैक्टिस करनी थी। हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमें किसी ने सिखाया भी नहीं, तो हमने क्या किया? जैसी बात थी वैसे ही सोचा, जैसे उन्होंने बोला उस अनुसार बोला, जैसे उन्होंने किया हमने भी ऐसा किया, और ऐसे हम चलते गए। तो ये है बाहर की दुनिया और ये है अंदर की दुनिया। सो आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। एक मिनट, दोनों हाथ इधर करेंगे। लेफ्ट हैंड पे आउटर वर्ल्ड को रखो, मतलब बाह्य जगत। बाह्य जगत में कौन कौन आएगा? ये शरीर, ये भी मेरा बाह्य जगत है। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा बाह्य जगत है। दूसरा लोग, रिश्ते, और तीसरा सिचुएशंस, और चौथा जगत, द वर्ल्ड। ये सब बाह्य है, और आंतरिक जगत कौन सा है? मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, मेरे संस्कार्स, ये अंदर है और ये बाहर है। अब लेफ्ट हैंड पे क्या है? दुनिया, मतलब बाहर की दुनिया, और राइट हैंड पे क्या है? आई, आंतरिक जगत। कौन किस पे डिपेंडेंट है? ये बाह्य जगत है, ये आंतरिक जगत है। जैसी बाहर की दुनिया वैसे मेरे मन की स्थिति, या जैसे मेरे मन की स्थिति वैसी मेरी दुनिया? इक्वेशन क्या होगी? जैसी दुनिया वैसी मेरी स्थिति, या जैसी मेरी स्थिति वैसी दुनिया? क्या इक्वेशन होगी? फॉर एग्जाम्पल, अपने घर को देखो। जैसे मेरे घर का माहौल वैसे मेरी मन की स्थिति, या जैसे मेरी मन की स्थिति वैसे मेरे घर का माहौल? कौन किस पर डिपेंडेंट है? आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है, या इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है? हम कहते हैं, हम कैसे भाषा यूज करते हैं? हम कहते हैं घर में इतना कले कलेश है, कौन शांत रह सकता है इस घर के अंदर? तो जैसे हमने वो लाइन बोली, हमने क्या कहा? मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? घर के माहौल पर। लेकिन घर का माहौल बनाया किसने? घर का माहौल बनाया किसने? किसने बनाया? तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ली है। हमने क्या किया है, ब्लेम गेम किया। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा, ऐसा हुआ तो मैं ऐसा, ये ऐसा हुआ तो मैं ऐसा, और ये करते करते हमने अपने मन की स्थिति को क्या कर दिया, गुलाम बना दिया। किस किस का गुलाम बन गया, चेक करना मेरे मन की स्थिति किस किस का गुलाम है, है गुलाम या नहीं है। गुलाम मतलब किस किस चीज का इफेक्ट यहां आता है। अगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया एकदम से अचानक, तो अगर मेरे मन पर इफेक्ट आता है उसका, तो मेरा मन उनके उस व्यवहार का गुलाम, डिपेंडेंट, अटैच्ड। और अगर ऐसे हम देखते जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट हो गए, और डिपेंडेंट होते 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 शक्ति क्या होती गई, कम। अभी एक मिनट आंख बंद करें, और अभी तो आपको 2-3 दिन हो गए यहाँ आए, आप वापस वहां जाएं जहां से आए थे, और वहां पर लास्ट कौन सी वो बात हुई थी जिस पे मैंने गुस्सा किया, चाहे मन में किया, चाहे शब्दों में किया, चाहे बिहेवियर में किया, लास्ट, क्योंकि वापस जाने के बाद तो करना नहीं है, तो लास्ट वाला देख लेते। नहीं करना ना वापस जाने के बाद, कैसे कर सकते, मैं शांत स्वरूप आत्मा गुस्सा नहीं करती। डीप बिलीफ सिस्टम है, क्रोध। अब देखें बात क्या हुई थी उस टाइम, किसने क्या किया था, किसने क्या कहा था, और मैंने किस तरह से रिएक्ट किया था। पहले मैंने मन में कैसा फील किया, फिर मैंने बात कैसी की, और मेरी बॉडी लैंग्वेज भी कैसी हुई उस टाइम। और अब सिर्फ चेक करना है कि फिर से ये बात आएगी नेक्स्ट वीक, फिर से कोई कुछ कहेगा, या हो सकता है वही व्यक्ति, वही स्टिमुलस, वही गलती, वही सिचुएशन एग्जैक्टली सेम आएगी, सेम। सिर्फ अब देखना है, क्योंकि अभी इस समय हम डिटैच्ड बैठे हैं, साक्षी बैठे हैं, इस समय कोई सिचुएशन नहीं है। सिर्फ देखना है अगर फिर से वो सिचुएशन आती है तो क्या मेरे पास एक अलग तरीका है रिस्पॉन्ड करने का। डू आई हैव द पावर, मतलब मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अभी कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और अपने आप को करते हुए देखें, क्योंकि जो आप अभी देखेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा अंदर, बात नहीं बदलेगी, लोग भी नहीं बदलेंगे, जगह भी नहीं बदलेगी, उनकी गलती भी नहीं बदलेगी, मुझे क्या चेंज लाना है, करते हुए देखो। और अगर दिखाई दे रहा है कि कोई और तरह से किया जा सकता था, तो एक बार हाथ उठाओ तो पता चले, हो सकता है एक अलग तरीके से, रेज योर हैंड्स, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, वापस आए, किस किस को लगता है हो सकता है, हो सकता है। अब आप सिर्फ चेक करिएगा, उस दिन जब हमने रिएक्ट किया था, हमारा रिएक्शन हमें बहुत जायज लगता है, और अगर उस समय हमें कोई आके कहता है किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है, बात उसकी ऐसी थी, गुस्सा नहीं आएगा क्या, तो हमने अपने गुस्से को क्या किया था, इंडोर्स भी किया था, उसको जायज भी समझा था, लेकिन सबसे डीप प्रोग्रामिंग जो हमने की थी, हमने कहा था ये गुस्सा उनके व्यवहार की वजह से या उनकी गलती की वजह से था। आज हमें यहां से जाने से पहले ये एक चीज को पूरी तरह से चेंज करके जाना है, फिर भले गुस्सा करो वापस जाके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने के बाद उंगली किस पर रखना। अगर मैंने अपने पास उंगली रखी ना, तो पावर किसके पास आएगी, मेरे पास। मैं बोलूंगी गलती उन्होंने की, लेकिन गुस्सा मैंने किया, या मैंने किया, तो किसने किया, मैंने किया, तो कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है, मैंने चूज किया गुस्सा करना, फाइन। लेकिन अगर मैंने कहा उनकी गलती थी, उनकी वजह से गुस्सा आया, तो मैंने पावर किसको दे दी, तो मैंने पावर किसको दे दी। तो आज से ये पक्का करना है, पावर नहीं देनी है बाहर, जैसे मैंने कहा उनकी वजह से आया, पावर वहां गई। उसने ऐसा किया इसलिए चिंता हुई, पावर वहां गई। ऐसा हुआ घर में इसलिए डर लगा, पावर वहां गई। गुस्सा मैंने क्रिएट किया, क्रिएट हमने किया या उन्होंने कराया था? किसने किया था सोचो, अभी भी किसने किया था? लोग कई बार लैंग्वेज में कहते उन्होंने किराया, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने थोड़ी किया, मेरा मूड तो बहुत अच्छा था। उन्होंने गुस्सा दिलाया, किसने दिलाया, किसने किया? रखो उंगली उनके ऊपर, किसने किया? रखो रखो, रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। किसने किया, किसने किया? यहां करे न करे, किसने किया? यहां चिंता किसने कराई? यहां दुखी किसने किया? यहां खुश भी किसने किया? यहां यहां। ये एक डीप प्रोग्रामिंग है, ये एक गलत प्रोग्रामिंग की वजह से सब कुछ ही ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि हमने अपने संस्कार, अपनी सोच, अपने शब्द, अपना व्यवहार, अपना कर्म भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई हमने का। लेकिन ऐसे करने से आत्मा की शक्ति क्या होती गई? कोई भी डिपेंडेंसी पावर को क्या करेगी? कोई भी डिपेंडेंसी हेल्थ को क्या करेगी? कमजोर करते जाएगी। तो यहां से जाने के बाद बातें नहीं बदलेंगी, कोई और नहीं बदलेगा। यहां से जाने के बाद कौन बदला हुआ होगा? हाँ, इतने बदले हुए होंगे कि लोग बोलेंगे भाई क्या हुआ, कहां गए थे? तो आप कहेंगे वहां गए थे। ओ हो, वहां कैसे चले गए? वहां इसीलिए तो जादू हो गया, वहां चले गए ना, नहीं जाना चाहिए था वहां। हाँ, वहां चले गए, अभी गुस्सा नहीं करते आके, है ना। तो परिवार वालों को बड़ा अलग अलग सा लगता है, इनको कैसे हो गया, आज ये कैसे हो गए हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो इतना इजी था, लेकिन कर करके इतनी शक्ति घटा दी कि आज हमें हाथ उठाना पड़ता है। खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, और जिनसे चाहिए वो भी हाथ उठा रहे हैं मुझे भी चाहिए, तो किससे मिलेगा? चाहिए भी तो ठीक था, लेकिन किससे मिलेगा? क्योंकि आपकी साथ वाली जो कुर्सी पे बैठे वो भी बोलते हैं मुझको भी चाहिए। तो एटलीस्ट घर पे चूज तो करना पड़ेगा ना, कि सारे ऐसे तो नहीं खड़े हो सकते, किसी को तो ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। तो यहां से जाने से पहले ये हमारा डिसीशन है, हम ऐसे नहीं होंगे। अब हम कैसे होंगे? हम कैसे होंगे? देने वाले, देने वाले, देने वाले को ही देवता कहते हैं। और वैसे भी सृष्टि परिवर्तन का समय आ रहा है, तो जो युग आने वाला है वो ऐसा वाला युग है। तो ऐसा वाला युग लाने के लिए हमें वैसा वाला बनना है, क्योंकि लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। जितना हम ऐसे 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 वाले होते गए, संस्कार क्या होता, संसार कैसा होता गया, संसार की हालत कैसी होती जा रही है। अब सब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि संसार किसी तरह ठीक हो जाए, ये पक्का कर लेना, संसार ठीक नहीं हो सकेगा। संसार को ठीक करने का सिर्फ एक ही इक्वेशन है, संस्कार को बदलेंगे तो संसार ठीक होगा। क्योंकि लॉ क्या है? संस्कार से संसार बनता है। अगर हमारे घर में कलह कलेश चला हुआ है तो कोई कहेगा नर्क लगा हुआ है इनके घर में, तो आप अपने घर को नर्क से स्वर्ग कैसे बनाएंगे? घर के साइज को चेंज करेंगे? नहीं, घर के फर्नीचर को चेंज करेंगे? घर को और खूबसूरत बनाएंगे तब वो स्वर्ग बनेगा? नहीं, सिर्फ किसको चेंज करेंगे? खुद को चेंज करेंगे, संस्कार को चेंज करेंगे, कहेंगे इनके घर में तो स्वर्ग हो गया अभी। तो नर्क और स्वर्ग कौन बना रहा है? यहां, चाहे वो घर में है चाहे वो सृष्टि पर है, वो बन कहां रहा है? यहां। तो जब हम आए थे यहां, हम कलयुग से आए थे और कलयुगी संस्कार लेकर आए थे, और अब हम जाएंगे तो कौन सी स्थिति में जाएंगे? कौन सी स्थिति में जाएंगे? आज से एक संकल्प अपना फिक्स करना, मैं सत्युगी आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? मैं सत्युगी आत्मा हूं। और सत्युगी आत्मा कैसी होती है? देने वाली। रेडी हम बनने के लिए सत्युगी आत्मा? कौन कौन रेडी बनने के लिए? सब। लेकिन जब वापस जाएंगे तो वापस सत्युग नहीं है वहां पे। सत्युग में सत्युगी आत्मा बनना तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है, सारा ही सत्युग है, सभी सत्युगी आत्मा है। हमें कलयुग को बदलने के लिए, कले कलेश की इस दुनिया को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है क्योंकि समय आ चुका है। आप सब पांडव भवन जाके आए, देखा पांडव भवन? नहीं गए होंगे ना, तो सृष्टि चक्र कहीं नहीं देखा अभी तक, चित्र नहीं देखा होगा ना अभी। अच्छा, जैसे आज सुबह थी, फिर दोपहर हुई, अभी देखो बदलने लग गया, शाम हुई, अभी एक घंटे के अंदर इधर रात होने लग जाएगी। हम वही लोग हैं, सुबह भी हम ही थे, दोपहर को भी हम ही थे, शाम को भी हम ही हैं, रात को भी हम ही होंगे, फिर सुबह होगी। ये चक्र घूमता रहेगा, हर 24 घंटे ये चक्र घूम रहा है। कौन सा चक्र घूम रहा है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, नाइट के बाद मॉर्निंग। टाइम इज साइक्लिक, समय चक्र के रूप में घूमता है, समय स्ट्रेट लाइन नहीं है। टाइम इज नॉट लीनियर, इट इज साइक्लिक, वो साइकिल में चलता है। इसी तरह स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, फिर स्प्रिंग, साइकिल में घूमता है। ये सारे साइकिल हमने देखे हैं क्योंकि वो 24 आवर्स 24 घंटे का साइकिल है, वो 365 दिन का साइकिल है, चार ऋतुएं हैं, घूमता जाता है, हमें पता होता है। अभी गर्मी है, कोई ये थोड़ी बोलता हो गर्मी क्यों है, बोलो अप्रैल में गर्मी नहीं होगी तो क्या होगी, गर्मी। तो ये नेचुरल है, ये घूमता जाएगा। इसी तरह एक थोड़ा सा बड़ा साइकिल होता है, उसमें भी चार पार्ट्स ही होते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है सत्युग, दूसरा पार्ट होता है त्रेता युग, तीसरा पार्ट होता है द्वापर युग और चौथा पार्ट होता है कलयुग। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, माइंड में ड्रॉ करें अभी स्वास्तिक, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, और फिर हम बिंदी लगाते हैं, उंगली रखो, बिंदी लगाओ। कैसे लगाते हैं स्वास्तिक में बिंदी? पहले फोर पार्ट्स ड्रॉ करते हैं, फोर पार्ट्स इक्वल ड्रॉ होते हैं हमेशा, ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा एक मोटा, ऐसा नहीं होता कभी भी। स्वास्तिक मतलब ऑल फोर पार्ट्स इक्वल। फिर उसके बाद बिंदी कैसे लगाते हैं? पहले कहां लगती है बिंदी? पहले इधर लगती है, फिर इधर लगती है, फिर इधर लगती है, फिर इधर, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो किसी भी ऑर्डर में। अब इसको लगाओ, ये जो पहला पार्ट है, और बिंदी मतलब मैं आत्मा, तो बिंदी लगाना मतलब मैं आत्मा पहले सत्युग में थी, फिर मैं आत्मा त्रेता युग में आई, फिर मैं आत्मा द्वापर युग में आई, अब मैं आत्मा कलयुग में। पकड़ के रखो एक बार कलयुग में आत्मा को। अब कलयुग के बाद मैं आत्मा कहां जाऊंगी फिर? पक्का? और तो कोई जगह है ही नहीं, जा ही नहीं सकते कहीं और। इट हैज टू मूव साइकिल। ऐसे नहीं हो सकता कि नाइट के बाद इवनिंग के बाद आफ्टरनून फिर मॉर्निंग, ऐसे नहीं होना। नाइट के बाद मॉर्निंग, ये वाला जो जंप होता है ये सबसे बड़ा जंप होता है। सत्युग से कलयुग तक आना बहुत ग्रेजुअल होता है, धीरे 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 धीरे, लेकिन कलयुग से सत्युग जाना बहुत बड़ा जंप होता है। सत्युग में हर आत्मा कैसी होगी? वी जस्ट हैव टू थिंक। हाँ, सत्युग में हर आत्मा कैसी होगी? सत्युग में वो जो 7 क्वालिटीज है ना हमारी, वो फुल। तो आत्मा को बैटरी की तरह देखते हैं, तो सत्युग में बैटरी कैसे होगी? फुल, फुल। इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। इसीलिए वहां शरीर भी कैसा होगा? परफेक्ट हेल्दी होगा। क्यों परफेक्ट हेल्दी होगा? क्योंकि आत्मा परफेक्ट हेल्दी है, तो शरीर भी परफेक्ट हेल्दी होगा। और फिर उसमें प्रकृति भी कैसी होगी? प्रकृति भी कैसी होगी? एकदम परफेक्ट। उसमें से आर्मी, नेवी, ये सब होगा सत्युग में? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे तब वहां पे सत्युग में? फिर हाँ, सत्युग में कुछ भी नहीं होगा ये सब। सत्युग में तो डॉक्टर भी नहीं होगा, सत्युग में तो लॉयर भी नहीं होगा, सत्युग में कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सत्युग कैसा वर्ल्ड है? परफेक्ट वर्ल्ड है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जिसमें दुख, दर्द, कलेश, लड़ाई, युद्ध तो खैर दूर की बात, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सत्युग में बैटरी कैसे? एकदम फुल। फिर ऐसे करते 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 आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, फिर दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, धीरे धीरे त्रेता युग में आती है। त्रेता युग में बैटरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। मतलब अगर 100 थी तो 90, एकदम थोड़ी सी कम। फिर एक शरीर लेती है, दूसरा लेती है, तीसरा लेती है, लेकिन यूज करते 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 धीरे धीरे अपनी बॉडी से अटैच होने लगते हैं हम। सत्युग में नेचुरल पता था, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है और हम कर्म कर रहे हैं, नेचुरल। आज कलयुग के एंड में किसी को याद रहता है सारा दिन में मैं आत्मा हूं? याद रहता है मैं आत्मा हूं? नहीं, सिर्फ जब किसी के अंतिम संस्कार पे जाते तभी आत्मा वर्ड याद आता है, या फिर कोई भूत की पिक्चर देखे तो आत्मा वर्ड याद आता है, बाकी तो सारा दिन याद ही नहीं है मैं आत्मा हूं। मैं नाम हूं, मैं औधा हूं, मैं रिश्ता हूं। सुबह सुबह शीशे में देखते हैं मैं आज कैसी दिख रही हूं, शरीर को मैं बोलते हैं। तो सत्युग मतलब नेचुरल सोल कॉन्शियस एंड कलयुग एंड मतलब नेचुरल ईगो कॉन्शियस। और इसलिए सत्युग मतलब बैटरी फुल, कलयुग के एंड तक बैटरी कैसे हो गई। अब देखो सत्युग से कलयुग के एंड का ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ था, बैटरी धीरे 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 धीरे, लेकिन अभी कलयुग से सत्युग, कलयुग सत्युग बैटरी कैसे चार्ज होगी अभी? क्योंकि कलयुग से सत्युग लाना है तो बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। कैसे होगी बैटरी चार्ज? बैटरी चार्ज करनी है। सत्युग से कलयुग धीरे धीरे हजारों साल लगे, इस साइकिल को 5000 इयर्स लगते हैं, लेकिन कलयुग से सत्युग 5000 इयर्स नहीं है करने के लिए। इट्स नॉट गोइंग लाइक दिस, इट इज जंपिंग लाइक दिस। कैसे होगा? सुबह से रात होती है तो इतने घंटे लगते, रात से सुबह इतने घंटे नहीं लगने, रात से सीधा सुबह। तो बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? नॉर्मल बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? पावर हाउस। बैटरी खुद खुद को चार्ज नहीं कर सकती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है? पावर हाउस से कनेक्ट करना है। तो आज आपको सुबह किसका इंट्रोडक्शन मिला? पावर हाउस। तो आत्मा को चार्ज करने का सिंपल तरीका परम आत्मा से कनेक्ट करना। इसीलिए जो अभी हमने किया एक्सरसाइज, पहले सिर्फ मैं आत्मा उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर सेकंड हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा एकदम परमात्मा के समीप ऐसे, और परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर भर रही, और उसको होल्ड करना है, उसको होल्ड करना है। और हर रोज अगर हम कुछ मिनट्स के लिए भी, टू बिगिन विथ कुछ सेकंड्स के लिए, पर उसके बाद एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए भी ये करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस नॉर्मल होने लग जाएंगे। फिर ये जो सात संस्कार हैं ये नॉर्मल होने लग जाएंगे। हमें वर्क नहीं करना है, गुस्सा कम करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे करना, इतना मेहनत नहीं करना है। जस्ट सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है, परमात्मा से कनेक्ट करना है, बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी जितनी चार्ज होती जाएगी वो सेवन संस्कार अपने आप नेचुरल में आते जाएंगे। लेकिन पहले डिसीशन लेना है, बनाना है सत्युग, बनाना है सत्युग। इस समय सृष्टि पे दो सेट ऑफ लोग होंगे, एक जो कलयुग को और कलयुग बनाएंगे, और दूसरे जो कलयुग में रहते सत्युग बनाएंगे। कौन सा ज्यादा आसान है? कौन सा ज्यादा आसान है जीवन जीना? कलयुग में कलयुग बनाना और आसान है? कलयुग में कलयुग बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना, कोई एफर्ट नहीं करना है। लेकिन कलयुग में रहना कितना मुश्किल होता जा रहा है, हो नहीं रहा मुश्किल, थोड़ी देर भी शांति नहीं एक्सपीरियंस हो रही, दर्द तक बोझ लग रहा है। और उतना बोझिल होके चलते हुए अचानक अगर जीवन में कोई सिचुएशन आ गई, कोई बात आ गई, तो उसको तो फेस करने की पावर नहीं है। तो इसलिए एक चीज यहां से जाने से पहले पक्की करनी है कि हमने तो अपनी जीवन ही देश की रक्षा के लिए दी है, लेकिन अब जो रक्षा होगी वो एक अलग लेवल की होगी। ये वाली तो करनी है, ये तो हमारा रोल है, ये रोल तो प्ले करना ही है। अभी तो आने वाले समय में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमेशा ही था लेकिन अभी तो बहुत कुछ होगा। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करना है, लेकिन एक है रोल प्ले करना, एक है सोल को पावरफुल बनाना। तो रोल प्ले करते हुए सोल पर वर्क करें, ताकि हम सिर्फ देश को इस समय सुरक्षित करने का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, हम देश को स्वर्णिम भारत बनाने का भी रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जो सत्युग है ना, जो स्वर्ग है, जो सत्युग है, उसी को स्वर्णिम भारत कहते हैं, अखंड भारत जिसको कहते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन कौन सी है? सृष्टि पर जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, प्राचीन जो सिविलाइजेशन है, वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो भारत खंड है। बहुत सारी और जो भी हमें सिविलाइजेशन दे रहे हैं, तो वो तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अभी अभी 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले के। तो वो भारत, अखंड भारत, इतना छोटा भारत नहीं, बड़ा भारत, अखंड भारत। तो वो अखंड भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनना है, तो इसमें हम सबका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन उसमें क्या करना है, हमें सब कुछ यहाँ करते हुए अटेंशन कहाँ रखना है? अटेंशन कहाँ रखना है? यहाँ, यहाँ कि मुझे सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं करनी है, मुझे देश को कलयुग से सत्युग बनाने में अपना योगदान देना है। कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज माय कॉन्ट्रीब्यूशन? क्योंकि बाकी सब लोग तो कलयुग को और कलयुग ही बना रहे हैं, तो इस समय जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। जैसे एक मकान है, टूट रहा है, साथ साथ एक नया मकान बनाना है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई मकान ही नहीं है। लोग कहते हैं क्या होगा इस दुनिया का, पता नहीं क्या होगा, ऐसे है प्रेडिक्शन, वैसे है प्रेडिक्शन, ये प्रलय हो जाए। इट विल नेवर हैपन, द वर्ल्ड नेवर कम्स टू एन एंड। दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, दुनिया परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। तो पुराना मकान क्रम्पल हो रहा है, नया मकान कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हमें सिर्फ चूज करना है दोनों में से कौन सी साइड पे खड़ा होना है। कौन सी साइड पे खड़े होंगे? जो इसे टूट फूट रहा है उसको तोड़ फोड़ेंगे, और या जो नया बनाना है उसको बनाएंगे। कौन सी साइड पे खड़े होना है? नया। अच्छा, अभी दोनों हाथ रखें, देखते हैं कैसे हमें नए साइड पे खड़ा होना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड कलयुग साइड, राइट हैंड सत्युग साइड। लेफ्ट हैंड जो संस्कार अभी हम बोलेंगे, आप चूज करना कि वो लेफ्ट हैंड वाले हैं या राइट हैंड वाले हैं। ठीक है, कौन सा संस्कार सत्युग वाला होगा? जो आत्मा को अच्छा फील कराएगा, कंफर्टेबल फील कराएगा। और जो कलयुग वाला संस्कार होगा, वो आत्मा को अच्छा फील नहीं कराता है, और वो आत्मा की शक्ति को क्या करता है? घटाता है। ओके, स्टार्ट। आप रखेंगे और फिर बोलेंगे लेफ्ट राइट, नहीं हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कलयुग सत्युग, कलयुग सत्युग। ठीक है, ओके। स्ट्रेस कौन सी साइड पे आएगा? पक्का? पक्का स्ट्रेस कलयुग साइड पे आएगा। तो सत्युग साइड पे क्या आएगा फिर? इसका ऑपोजिट करते जाना है अभी। स्ट्रेस कलयुग साइड पे आएगा, तो फिर सत्युग साइड पे क्या आएगा? पीस आएगा, शांति आएगी। ओके, गुस्सा सोच के रहे, ध्यान से ना, हम कलयुग साइड पे तो जा नहीं सकते, तो गुस्सा कौन सी साइड पे आएगा? कलयुग साइड पे आएगा। अब उसी सिचुएशन में मैं सत्युगी आत्मा हूं, तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है? राइट हैंड पे क्या आएगा? प्यार, कंपैशन, दूसरे के दर्द को, दूसरे की कमजोरी को समझते हुए करना। डर कौन सी साइड पे आएगा? आप वो हैं जो बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन घर पे छोटी सी बात भी आ जाती है ना, तो एक डर, डर मतलब भय, क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, बच्चे का ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो वाली वाइब्रेशन आत्मा की शक्ति को क्या करती है? कम करती है। और जिनके प्रति हम डर क्रिएट कर रहे हैं, या वरी क्रिएट कर रहे हैं, या चिंता क्रिएट कर रहे हैं, वो उनकी वाइब्रेशन को भी क्या कर देती है? कम कर देती है। ऑपोजिट, चिंता और डर नहीं क्रिएट करना, वो आत्मा की शक्ति को क्या करेगा? बैटरी को कम करेगा। ऑपोजिट, केयर, केयर मतलब हर वाइब्रेशन, हर थॉट कैसी होगी? बढ़िया होगा, बढ़िया के अलावा कुछ नहीं होता। वोकैबुलरी चेंज, जैसे आपने किसी के लिए सोचा इसका बढ़िया होगा, बढ़िया के अलावा कुछ नहीं होता, आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी उसको चली जाएगी, आपकी भी बैटरी बढ़ेगी और जिसके लिए आपने वो थॉट क्रिएट की उसकी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने कहा क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, हम उनसे दूर हैं, वो घर पे हैं, हम फिजिकली नजदीक नहीं हैं, तो हम और भी ज्यादा वरी करते हैं। लेकिन हम देश के किसी भी कोने में हो, आप जहां होंगे वहां से बैठकर अगर आपने एक पावरफुल थॉट क्रिएट की, वो आपके व्हाट्सएप मैसेज से भी पहले पहुंचते हैं। और मैसेज तो सिर्फ इन आंखों से पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन जब आप थॉट भेजते हैं वो आपकी थॉट उस आत्मा रूपी बैटरी तक पहुंचती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है और उनको सडनली फील होने लगता है इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, सब बढ़िया होगा। लेकिन उनके पास ये थॉट कहां से आई सब बढ़िया होगा, आपने दूर कहीं बैठ के वो क्रिएट की है। तो सिचुएशन कुछ भी हो, हमें फोकस किस पर करना है, यहां पे कैसी थॉट क्रिएट करनी है। क्रिटिसिज्म कौन सी साइड पे आएगी, इस साइड पे क्या आएगा, फिर किसी के भी बारे में, दूसरे की कितनी भी गलती हो, दूसरे की कमजोरी हो, दूसरे के घर में कोई प्रॉब्लम हो, हमें निंदा करके अपनी शक्ति, उनकी शक्ति, जिनको सुना रहे हैं उनकी शक्ति, घर का वायुमंडल उसकी शक्ति, और देश का वाइब्रेशन और दुनिया का वाइब्रेशन उसकी शक्ति, उसको कम नहीं करना है। ये कलयुगी तरीका है रहने का। राइट हैंड पे क्या आएगा, यहां निंदा आता है, क्रिटिसिज्म आता है, यहां क्या आएगा, अप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो अप्रिसिएशन जैसा कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम ब्लेसिंग दे सकते हैं। पता है क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उनका ऐसे हो गया, ऐसे ही करते हैं ये एक एक थॉट फिर एक एक कॉन्वर्सेशन में आती है। हम आपस में बैठ के ये सब बातें भी करते हैं, पता है क्या हुआ उनके घर में, ये ना हुआ, ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे किया, नहीं ऐसे किया, हमें लगता है नॉर्मल है, उन्होंने किया तो हम बात करेंगे ही ऐसी, नहीं, जो उन्होंने किया या उनके यहां जो हो रहा है वो हम बात नहीं करेंगे, उसको करने के लिए उनको कौन सी शक्ति चाहिए वो उनको हम ब्लेसिंग भेजेंगे। तो उससे क्या होगा, बैटरी हमारी भी बढ़ेगी, जिनके लिए हमने सोचा उनके लिए भी बढ़ेगी। सत्युग बनाना मतलब सिर्फ एक लक्ष्य रखना, मेरी सोच बोल और कर्म से आत्मा रूपी बैटरी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर मेरी बढ़ेगी तो औरों की बढ़ेगी, अगर हम सबकी बढ़ेगी तो वायुमंडल की बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगा तो सृष्टि परिवर्तन हो गया। एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम, कौन शुरू करेगा इसको, मैं। तो क्रिटिसिज्म नहीं, कंपैरिजन नहीं, जेलेसी नहीं, सहयोग। हर संस्कार को शिफ्ट करना है। ईगो, ईगो कौन सी साइड पे आएगा, कलयुग पे। तो सत्युग साइड पे क्या आएगा, अहंकार का ऑपोजिट क्या होता है, अहंकार का ऑपोजिट ह्यूमिलिटी, नम्रता। जितनी सफलता बढ़ती जाए, जितनी सफलता बढ़ती जाए उससे ज्यादा ह्यूमिलिटी बढ़नी चाहिए, तब वो सफलता है, नहीं तो वो सिर्फ रोल एंड पोजिशन है, तब नहीं तो वो रोल एंड पोजिशन है। क्योंकि अगर सफलता से हमारा अहंकार बढ़ा तो रोल तो ऊपर चला गया लेकिन सोल तो नीचे हो गई, सोल तो नीचे हो गई क्योंकि अहंकार बढ़ गया। अटैचमेंट, अटैचमेंट कौन सी साइड पे आएगा, अटैचमेंट कलयुग साइड पे आएगा, फिर सत्युग साइड पे क्या आएगा, क्या आएगा सत्युग साइड पे, क्या आएगा, ऐसे पकड़े दो हाथ, इसको अटैचमेंट कहते हैं। अभी चेक करना आप किस किस चीज से या किस किस से अटैच्ड हैं। अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति इस पर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, ये परेशान तो मैं भी परेशान, ये नाराज तो मैं भी नाराज, ये उदास तो मैं भी उदास। अगर ये कोई चीज है, ये टूटी तो मैं भी मन में टूटा। अब इस पे लिस्ट बनाना किस किस चीज से अटैच्ड है। और डिटैचमेंट मतलब ये परेशान मैं शक्तिशाली, ये उदास मैं स्थिर, ये डरे हुए मैं कॉन्फिडेंट। कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, ये वाला या ये वाला। सबसे बड़ी गलती हमारी कलयुग की, हमने अटैचमेंट को ही प्यार बोल दिया, और हमने कहा आई एम सो अटैच्ड टू, आई एम सो अटैच्ड, बोल बोल के नहीं भी अटैच थे तो और ऐसे होते गए। दोनों हाथ रखें, लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें या परिवार के किसी सदस्य को रखें, राइट पर अपने को रखें। ओके, अब ये जो लेफ्ट हैंड पर है, अगर इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, या खुद के किसी संस्कार के वश वो उनकी स्थिति थोड़ी नीचे जाती है, उनकी लाइफ में कोई फेलियर आ जाता है, कोई कंफ्यूजन आ जाता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, वो थोड़े नीचे चले जाते हैं। वो हमारे बच्चे हैं या वो हमारा परिवार है, तो उनको ऐसे देखकर हम भी कहां चले जाते हैं? करो करो, राइट हैंड कहां चला जाता है? राइट हैंड भी नीचे चला जाता है। और अगर राइट हैंड भी नीचे चला गया तो हमसे उनको कौन सी वाली वाइब्रेशंस मिलेंगे? दर्द वाली मिलेगी। वो पहले से ही दर्द में थे और हमसे उनको दर्द वाली वाइब्रेशन मिलेगी तो वो और कहां चले जाएंगे? और नीचे चले जाएंगे। और अगर वो और नीचे चले गए, उनको देखकर हम कहां चले जाएंगे? और ऐसे 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 घर ऐसे हो जाता है। तभी तो कलयुग बना, तभी तो कलयुग बना। होना क्या चाहिए? अगर कोई हमारे घर में थोड़ा सा स्थिति में नीचे जाता है, हमें कहां होना चाहिए? कितना ऊपर? करे करे, कितना ऊपर होना चाहिए? कितना ऊपर होना चाहिए? इतना ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें शक्ति देना है, इसलिए हमें बोलना, हमने गिवर बनना है, देने वाला। अटैचमेंट हमको लेने वाला बना देती है, उनकी स्थिति हम पर असर करती है, और प्यार हमको क्या बनाता है? देने वाला बनाता है। तो कौन सी वाली साइड पे खड़ना है, अटैचमेंट या प्यार? अटैचमेंट या प्यार? प्यार मतलब मुझे देना है, अटैचमेंट मतलब जो उनकी स्थिति वो मेरी स्थिति। अब कोई भी अटैचमेंट को कम नहीं कर सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अटैचमेंट को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, सोल को पावरफुल बनाते जाओ, वो अपने आप डिटैच्ड होती जाएगी। लेकिन हम सोचे मुझे डिटैच होना है, डिटैच होना है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सोल को पावरफुल बनाते जाओ तो उसकी डिपेंडेंसी क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच्ड होती जाएगी। अभी तो हमारा फोन पे एक स्क्रैच आ जाए, गिर गया, तो हम तो उसे भी, वो भी बुरा लग जाता है। लगता है कि नहीं बुरा? लगता है बुरा? अगर उस टाइम बुरा लगा तो अपने आप को कहना, मैं अपने फोन से अटैच्ड। लिस्ट बनाएंगे तो लंबी लिस्ट निकल के आएगी, किस किस चीज से अटैच्ड है, कौन कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है। और जैसे ही रोज थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करेंगे, फिटनेस लेवल को बढ़ाएंगे, तो हमारे को कुछ भी हो जाए, सिचुएशन आती है, सिचुएशन ठीक हो जाती है। बीच का जो गैप होता है उसमें देखना है स्थिति कैसी थी। दिस इज लाइफ। ये जानबूझ के बंद किया था देखने के लिए, बीच में क्या करेंगे। सिचुएशन आएगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बीच में एक गैप होता है, वो गैप कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ मिनट्स का होता है, कुछ घंटों का होता है, कभी कभी कुछ दिनों का होता है, कभी कभी कुछ सालों का होता है। और कभी कभी कोई सिचुएशन होती है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक परिस्थिति है। परिस्थिति मतलब बाहर। तो हमेशा याद रखना है, परिस्थिति बाहर है, ये मेरे मन की स्थिति है। मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। हर परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, चाहे परिस्थिति छोटी सी है फोन गिरा, या चाहे परिस्थिति इतनी बड़ी है कि परिवार का कोई सदस्य आगे चला गया। ये सबसे बड़ी परिस्थिति आती है हमारे घर के अंदर, जब हमारा कोई फैमिली मेंबर अपने उस पुराने देह को त्याग करके आत्मा आगे उड़ जाती है। अब अगर अटैचमेंट है तो उस सीन में हम कैसे हो जाते हैं? अटैचमेंट है तो उस सीन में हम कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? सिर्फ दुखी नहीं होते, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं उस समय। हम कहते हैं, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया ये। एक्चुअली अगर डिटैच्ड होंगे तो उस समय अपने बारे में नहीं सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? हमेशा याद रखना, ये वाला जो ऐसे वाला संस्कार होता है ना, ये किसके बारे में सोचता है? ये दूसरों के बारे में सोचता है। जो ये वाला संस्कार होता है ना, वो सिर्फ किसके बारे में सोचता है? मेरा क्या होगा। सो अटैचमेंट हमें स्वार्थी बनाता है, स्वार्थी मतलब स्व अर्थ, मेरा क्या होगा, और डिटैचमेंट हमें निस्वार्थ बनाता है कि दूसरों के लिए क्या करना है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे परिवार से कोई आत्मा, अब प्रैक्टिस करनी है, जो भी लाइट जाएगी आएगी, आपको वो टाइम यूज करना है, क्या करने के लिए यूज करना है, मैं आत्मा सेंटर ऑफ द फोर है, टाइम मिला मुझे क्या करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो वाली तो लाइट गई, मेरी लाइट और पावरफुल हो गई, ऐसा ऑलवेज कीप यूजिंग। तो जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है तो वो आत्मा की स्थिति कैसी होगी उस टाइम, वो आत्मा की स्थिति कैसी होगी जो देह को त्याग करती है, विजुअलाइज। चलो एक काम करो, यहां हाथ रखो एंड जस्ट लीव द बॉडी, ऐसा विजुअलाइज करो, मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, यहां गए, अब यहां से मुड़ो और अपने घर को देखो, क्या देखना चाहेंगे, सब कैसे हैं, क्या देखना चाहेंगे, आपने शरीर छोड़ दिया, आप आगे चले गए, पीछे मुड़ के देखो परिवार को कैसा देखना चाहेंगे, कैसा देखना चाहेंगे, खुश, अभी खुश तो नहीं होंगे वो वैसे वाला खुश, लेकिन खुश मतलब नॉर्मल, सब सेटल्ड, सब टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग फाइन। हर एक आत्मा यही देखना चाहती है, हर एक आत्मा देखना चाहती है, लेकिन अगर पीछे मुड़कर हमने ऐसा देखा कि सब ऊपर नीचे हुआ हुआ है, वो कह रहे हम कैसे जिएंगे, ऐसे कैसे आप छोड़ के चले गए, आप वापस आ जाओ, तो जिसने आगे जाना है वो कैसे आगे जाएंगे, जा नहीं सकते। तो इसीलिए प्यार मतलब इनकी विदाई कैसे करनी है, अटैचमेंट मतलब मेरा क्या होगा। तो छोटी सी सिचुएशन से लाइफ की सबसे बड़ी सिचुएशन तक अटैचमेंट कमजोर बनाती है और प्यार शक्तिशाली बनाता है। लेकिन हम कैसे होंगे डिटैच, सिर्फ सोल पावर को बढ़ाने से। तो सपोज हम एक सीढ़ी पर चल रहे हैं और साथ में एक रेलिंग है, सपोज मेरा शरीर बहुत कमजोर है तो मुझे रेलिंग पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है, तो वो है अटैचमेंट, वो है डिपेंडेंसी। बट मुझे अब अपने फिटनेस लेवल को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में वो रेलिंग को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, चाहे मैं रेलिंग छोड़ के एक ही स्टेप चढ़ पाऊं और फिर वापस फिर से उसको पकड़ लूं। लेकिन अगर मैंने एक स्टेप भी छोड़ा रेलिंग, तो उस एक स्टेप में भी मेरी मसल स्ट्रेंथ क्या होगी, बिल्डअप होगी, तो थोड़ी देर के बाद मैं दो स्टेप छोड़ सकती हूँ, फिर मैं चार स्टेप छोड़ सकती हूँ, फिर मैं पूरी सीढ़ी चढ़ सकती हूँ बिना रेलिंग पकड़े, राइट, ऐसा ही होगा। और फिर धीरे धीरे तो मैं एक एक स्टेप छोड़ के भाग के भी वो सीढ़ी चढ़ सकती हूँ। बट हाउ डिड इट स्टार्ट, एक एक, इसीलिए जो हम अभी कर रहे हैं, एक सेकेंड मैं आत्मा, जैसे ये किया ना, एक सेकेंड मैं आत्मा शक्तिशाली, हमने बॉडी कॉन्शियस और ईगो कॉन्शियस की वाइब्रेशन से अपने आप को क्या किया, ऊपर उठाया। पहले वो एक सेकेंड के लिए होगा, फिर वो दो सेकेंड के लिए होगा, फिर वो पांच सेकेंड के लिए होगा, फिर वो एक मिनट के लिए होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते जानी है। जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लेफ्ट साइड से, हम इतनी लंबी लिस्ट पे वर्क नहीं कर सकते, ईगो भी, अटैचमेंट भी, गुस्सा भी, स्ट्रेस भी, चिंता भी, डर भी, ये तो पता नहीं कितने जीवन लग जाएंगे एक एक संस्कार को ठीक करने में। एक एक संस्कार को ठीक नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्या करना है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, जितना मैं आत्मा याद रहेगा सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कारों से अपने आप छूटते जाएंगे। करना है ना सत्ययोगी आत्मा, अब वापस जाकर कलयुग में रहते हुए सत्ययोगी आत्मा। इसीलिए देवी देवताओं को कमल पुष्प पे दिखाया जाता है। कमल पुष्प कैसा होता है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर होता है। तो परमात्मा सिखाते हैं आपका जीवन बिल्कुल लोटस जैसा होना चाहिए, कमल पुष्प की तरह होना चाहिए। दुनिया को छोड़ना नहीं है, परिवार को, जिम्मेवारियों को, रोल को छोड़ना नहीं है, लेकिन सबके बीच रहते हुए उसका प्रभाव हम पर नहीं, हमारा प्रभाव उन पर, ये है कमल पुरुष। परिस्थिति का प्रभाव हम पर नहीं, हमारा प्रभाव उन पर। तो जितना हम उसको करते जाएंगे हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, ऊपर। अब ये इस इक्वेशन को याद रखना, आपकी वाइब्रेशन को आप जितना ऊपर उठाएंगे उतना दूर तक आपकी पावर की वाइब्रेशन दूसरों को बेनिफिट करेगी। जैसे हम यहां हैं तो इतना ही दिखाई दे रहा है, फिर हम थोड़ा सा इस पहाड़ के ऊपर चले जाएं तो हमें कितना दिखाई देगा, फिर हमें इतना दिखाई देगा, फिर हम एरोप्लेन में चले जाए तो हमें सारा दिखाई देगा, उससे ऊपर चले जाएंगे तो उनको तो सृष्टि दिखाई देती है, ऊपर से पूरी दिखाई देती है ना। तो कहाँ है वाइब्रेशन में, कहाँ है, उतना आपकी वाइब्रेशन का प्रभाव उतने ऊपर पहुंचेगा, उतने ऊपर पहुंचेगा। तो यहां है तो कोई प्रभाव नहीं, थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाया, आपके आसपास के लोगों को आपकी वाइब्रेशन से बेनिफिट होगा। इस समय दुनिया में सबको क्या चाहिए, हम सबने अभी हाथ उठाया था ना, क्या चाहिए, तो दुनिया में सबको क्या चाहिए, तो इस समय एक और सुरक्षा की जरूरत है दुनिया को। एक होता है परिस्थिति में रक्षा चाहिए, एक है अपने मन की स्थिति से रक्षा चाहिए। अभी तो हर एक को शांति चाहिए, हर एक को सुख चाहिए। किस किस का मन है सबको देने के लिए, आपका तो संस्कार है ना सबको देने के लिए, सबका ध्यान रखने के लिए, तो किसका मन है सबको शांति देने के लिए, हम सबका मन है। कैसे देनी है, कैसे देंगे सबको, ऐसे जाके तो देनी नहीं है, क्या करना है इसके लिए, सिर्फ एक ही चीज रखना है, जितनी देर आपके मन की स्थिति शांत उतनी देर आपसे शांति का वाइब्रेशन फैल रहा है। तो अगर मैंने आज 5 में से 2 बार मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने उस सीन को पीसफुली क्रॉस किया, सिर्फ बाहर नहीं यहां भी, तो मैंने सिर्फ खुद को शांति नहीं दी, मैंने विश्व में शांति की वाइब्रेशन फैलाई। कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है कि नहीं सेवा। और अगर मैंने क्रोध किया तो मैंने सिर्फ खुद को गुस्से की शक्ति नहीं दी, मैंने विश्व के अंदर वो क्रोध की अग्नि को फैलाया। तो ये जो है ना, ये यहां तक अंदर नहीं टिका रहता, इसकी एनर्जी पूरी तरफ रेडिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ और बेनिफिट कितनों को, थोड़ा सा पुरुषार्थ और बेनिफिट कितनों को, सबको। ठीक है, रेडी चेंज करने के लिए अब हम एक छोटी सी विधि सीखेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है। एक तो ये प्रैक्टिस करनी है, सोल कॉन्शियसनेस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर सेकेंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती हूँ और उनकी वो सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरती हूँ, वो प्रैक्टिस करनी है। थर्ड चीज जो करनी है, अपने थॉट्स को भी साथ साथ चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट चेंज हमने क्या करना है, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम खत्म। मुझे गुस्सा किसने दिलाया, उंगली रखो, रखते जाइए अभी, मुझे गुस्सा किसने दिलाया, मुझे, मुझे दुखी किसने किया, मुझे हर्ट किसने किया, किसने हर्ट किया, अभी तक किस किस पे उंगली रखी थी, इसने किया, इसने किया, इन पे रखी थी ना उंगली, अभी तक किसने हर्ट किया, इन्होंने किया, तो हमने उन पर उंगली रखी और उन्होंने किस पर उंगली रखी, आपने मुझे हर्ट किया, देखा आपने मुझे हर्ट किया। लोग गलत कर सकते हैं, गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, दूसरों को हमारे बारे में बोल सकते हैं, लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं कर सकते, यहां घुसकर हमें दर्द नहीं दे सकते, राइट, वो यहां सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो यहां घुसकर हमें हर्ट नहीं कर सकते। कर सकता है कोई हमें यहां घुसकर, पक्का पक्का, कौन कौन पक्का, यहां उठ घुसकर मुझे हर्ट नहीं कोई कर सकता, मेरी इंसल्ट, मेरी इंसल्ट कौन करता है, मेरी इंसल्ट कौन करता है, मेरी डिसरिस्पेक्ट कौन करता है, कितने नाम है लिस्ट पे, कितने नाम है अब लिस्ट पे, किसने की मेरी हर्ट, इंसल्ट किसने की। जो गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है, वो एक्चुअली किसकी इंसल्ट कर रहा होता है, सब पता है हमको, लेकिन उस टाइम हम क्या कहते हैं, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी इंसल्ट कैसे कर सकता है कोई और, मेरी इंसल्ट कौन करता है, मैं। तो आज से सिर्फ फर्स्ट ये वोकैबुलरी चेंज, ठीक है, नोट हो गया, ये कौन सी वोकैबुलरी चेंज, यहां जो कुछ हो रहा है उसका रचयिता कौन, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और हमेशा मैं। तो अब कौन हर्ट करता है आपको, अब भाई साहब की तरफ देखो और बोलो आज से आपका मेरे ऊपर कंट्रोल, चलो हर एक दूसरे को देख के बोल दो, आज से आपका मेरे ऊपर कंट्रोल, फिनिश्ड। आज से किसका कंट्रोल है मेरे ऊपर, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? मेरे हाथ में। अब मैं हर्ट सिर्फ तब होंगी जब, अब मैं हर्ट सिर्फ कब होंगी जब मेरा मन होगा हर्ट होने का, और कितनी देर हर्ट होंगी जितना मैं चूज करूंगी। चॉइस सारी किसकी? मेरी। पहले तब क्या था? आपने हर्ट किया। ठीक कब होंगी? जब आप बदलेंगे। आपने अभी तक सॉरी नहीं बोला, बोला है तो फील नहीं किया है, फील किया है तो चेंज नहीं हुए हैं। ये सारी ने हमारी जीवन को क्या बना दिया? दूसरे के व्यवहार का गुलाम। राजयोग हमें बनाता है स्वराज्य। स्वराज्य किस पर राज्य? मन बुद्धि संस्कार पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। और जैसे जैसे ऐसे हम संस्कार बदलते जाएंगे तो हमारा संसार क्या होने लगेगा? बदलता जाएगा। एक और लॉ यूज करना है जिससे हमें अपने थॉट्स को सही रखना है, क्योंकि सारा दिन सोच 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 चलती है, तो हर सोच कैसी होनी चाहिए? इधर वाली होनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। फिर उसके लिए एक हम विधि सीखते हैं जिसको हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है। क्या होता है? संकल्प से सिद्धि। दो लॉज हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है और संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सृष्टि मतलब एक बार यहाँ हाथ रखे, थॉट्स 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 थॉट्स, सारा दिन थाउजेंड थाउजेंड थॉट्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। संकल्प से सृष्टि मतलब मेरी पूरी लाइफ यहाँ से क्रिएट हो रही है, क्योंकि मेरी हर थॉट से मेरी फीलिंग्स बनती हैं। फिर ये याद रखना है, मेरी थॉट्स कहाँ जाती हैं? मेरी बॉडी को जाती हैं। फिजिकल हेल्थ मेरी कहाँ से बन रही है? फिजिकल हेल्थ मेरी कहाँ से बन रही है? लोग कहते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में तो सिर्फ खाना पीना सोना एक्सरसाइज वो नहीं, लाइफ यहाँ है। आत्मा को लाइफ कहा जाता है। जब ये आत्मा लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी है। तो लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका। अब किसी को किसी की भी छोटी छोटी बात से हर्ट होता रहे तो हर्ट होना उसका लाइफस्टाइल है। अब वो लाइफस्टाइल सिर्फ यहां नहीं रहेगा, उस लाइफस्टाइल का इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? फिर उसको यहां दर्द होगा, कभी यहां दर्द होगा, कभी यहां। तो इसीलिए जब भी हर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब भी गुस्सा क्रिएट कर रहे हैं, पहले अपने आप को याद दिलाओ मेरे शरीर पर इसका असर पड़ रहा है, और फटाफट से फिर क्या करना है? फटाफट से क्या करना है? ठीक, डायरेक्ट असर पहले बॉडी पर ही पड़ता है। इसलिए मेजोरिटी बीमारियां कहां से क्रिएट हो रही है? अब उन लोगों को कहां रख रहे हैं? संकल्प से सृष्टि। मेजोरिटी बीमारियां कहां से क्रिएट हो रही है? यहां। और इलाज भी कहां से हो रहे हैं? यहां। इतने मिरेकल्स हम सुनते हैं जिसमें मेडिकल साइंस ने कहा होगा कि ये ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन उस आत्मा की शक्ति वो अपने शरीर को असंभव से संभव कराती है। क्यों? क्रिएटिव वहां से हुआ था तो हील भी वहां से होगा। इसीलिए जैसे ही मन कुछ ऐसा ऐसा सोचने लगे, फटाफट को नहीं नहीं नहीं, इसको ठीक रखना है मुझको, इसको ठीक रखना है मुझको, रखना है कि नहीं ठीक, इसको इसको ठीक रखना है। तो एक और चीज जो इसको बीमार करती है, बातों को पकड़ के रखना। बात को कहां हम पकड़ते हैं? यहां। लेकिन जितनी पुरानी बात यहां पकड़ के रखी हुई है, तो आप सोचो उतने सालों से वो वाइब्रेशन बॉडी को जा रहा है। अब क्षमा किसको करना है? क्षमा करना आसान है, फॉरगिव करना आसान है। क्या हुआ सत्युगी आत्माओं को? क्या हो गया? फॉरगिव करना आसान है कि नहीं? आसान है। कलयुग का संस्कार है पकड़ के रखना। सत्युग का संस्कार एक सेकंड में फिनिश्ड, एक सेकंड में फिनिश्ड। और जब एक एक सेकंड में फिनिश करते जाएंगे ना, तो उसके बाद तो बुरा ही नहीं लगेगा जो क्षमा भी करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। क्षमा भी तो तब करना पड़ता है ना, पहले कुछ बुरा लगे, फिर कुछ पकड़े, फिर क्षमा करें। लेकिन उसके बाद तो क्षमा करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा तो फॉरगिव क्या करना है? किस किस के पास बातें हैं कुछ जो फिनिश करनी है? चेक करो कबर्ड, चेक करें कबर्ड अपने। बतानी नहीं है आपने, बस हैं कि नहीं ये बताना है ना? है। पुरानी पुरानी होती है कुछ 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 बातें, तो बचपन की भी होती है अभी तक, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं करते, उसको बस रख देते पीछे। हमें लगा गलती उनकी थी, बुरा मुझे लगा, रख दिया पीछे। हमने उसको हील नहीं किया है, उसको चेंज नहीं किया है। तो हमेशा याद रखना है, वो सारी बातें जब मुझे चोट लगी थी तब मुझे पता नहीं था कि ये चोट मैंने खुद खुद को दी है, लेकिन मुझे लगा उनकी वजह से मुझे चोट लगी। किसी की भी वजह से लगी, चोट किसको लगी? मुझको लगी। तो ठीक किसको करना चाहिए था? मुझे। आई कान जस्ट वेट कि कोई और आके मुझे ठीक करेगा। लेकिन आत्मा के ऊपर अगर घाव लगे रहे तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और सिर्फ कम नहीं होगी, एक सेकंड में आत्मा अचानक कभी भी शरीर छोड़ सकती है, राइट? और अगर मेरे यहाँ घाव लगे हुए और मैं आत्मा शरीर छोड़ू तो वो घाव मेरे साथ जाएंगे। क्या आप घाव के साथ जाना चाहेंगे आगे? नहीं। कैसे जाना चाहेंगे? एकदम परफेक्ट हैप्पी। और अगर जाना वैसे है तो फिर जीना वैसे पड़ेगा, राइट? तो आज रात को सोने से पहले, आप सबके पास डायरी है, आप उनका नाम लिखेंगे जिसके साथ भी वो घाव बनाया है, गांठ पकड़ी है, उसका नाम लिखेंगे। और नाम लिखते हुए हम कहेंगे, पास्ट इज पास्ट, पुरानी बात खत्म हुई। दूसरा कब खत्म करेगा वो उसकी चॉइस है, वो उसकी गांठ और उसका घाव, उसकी चिंता नहीं करनी। हमें किसकी गांठ और घाव खत्म करना है? अपना। लेकिन एक चीज पक्की होती है, जब एक जना करता है और एक जने से वहां से वाइब्रेशन जाती है ना, तो दूसरे के लिए घाव ठीक करना इजियर हो जाता है। तो हम अपनी डायरी में लिखेंगे उनका नाम और हम लिखेंगे, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, वो बात खत्म हो गई, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं। बोले एक बार ये, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं, मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती भी हूं। हमें पता ही नहीं होता कभी कभी किसको हमारी बात से घाव बन गया होता है कहीं। रोज रात को ये प्रैक्टिस करना, इसको रोज रात को करना ही है, क्योंकि सारा दिन में कितनी बातें हो जाती हैं, कौन सी घाव हम पर लग जाती है, कौन सी हमारे व्यवहार से किसी और पर लग जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले हिसाब किताब को क्या करना चाहिए? पूरा। आपको पता है कुछ आत्माएं, शरीर ठीक नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर ने बोला अभी कुछ नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाती है। क्यों नहीं छोड़ पाती है? सब कुछ फिनिश्ड है बॉडी के अंदर, नथिंग वर्किंग, लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाती है। क्यों नहीं छोड़ पाती है? क्योंकि वो गांठ छोड़ने नहीं देती है। इसीलिए लाइट जाना है, इजी जाना है, उसके लिए लाइट जीना है, इजी जीना है, इसलिए गांठों को क्या करते जाना है? रोज रोज खोलना है। और फिर तो हम सीख जाएंगे कि गांठ बंद नहीं लेंगे, खोलनी पड़े। ये तो पुरानी गांठों की बातें हो रही है, अब तो हमने गांठ क्रिएट ही नहीं करनी है। और गांठ क्रिएट कैसे नहीं करनी होती है? जैसा ही कोई कुछ करे जो सही नहीं है, वो फिर हम कल देखेंगे, लेकिन जैसे ही कोई कुछ करे तुरंत अपने फर्स्ट थॉट में उसको ब्लेसिंग दे दो तो गांठ बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर हमने फर्स्ट थॉट में कहा उसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया किया, फिर मेरा घाव बनना शुरू हो जाएगा, फिर मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर भले ऐसे आई क्रिएट दिस हर्ट, लेकिन क्रिएट तो हो ही गया। तो फर्स्ट स्टेप होता है आई क्रिएट। पहले कैसे कर रहे थे? दे हर्ट मी, उन्होंने मुझे हर्ट किया, मतलब ये घाव किसने बनाया? उन्होंने बनाया। फर्स्ट स्टेप हमने अभी क्या किया? ये घाव उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ गलत व्यवहार किया, लेकिन घाव किसने बनाया? मैंने बनाया। कैसे बनाया? सोच। ये फर्स्ट स्टेप। लेकिन सेकंड स्टेप है उस घाव को क्या करना है? अभी हील करना है, तो वो हम कल देखेंगे। अब संकल्प से सिद्धि में हमें क्या करना है? जो हम चाहते हैं कि हमें करना है, हमें उसका थॉट बनाना है। जैसे हमें खुशी चाहिए तो हमें थॉट क्रिएट करना है, मैं खुश सुख स्वरूप आत्मा हूं। अभी तक हम क्या कह रहे थे? चाहिए 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 कहते रहेंगे तो चाहिए ही होगा हमेशा। फिर संकल्प से सिद्धि, इसको अपनी डायरी में कैपिटल लेटर में लिख लेना, मेरा हर थॉट मेरी रियलिटी बनता है। तो मुझे जैसी रियलिटी चाहिए, मुझे वैसा मुझे जैसी रियलिटी चाहिए मुझे वैसी थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी हम ऑपोजिट चल रहे थे, जैसी रियलिटी वैसी थॉट। लॉ एक्चुअली क्या था? जैसी थॉट वैसी रियलिटी। तो सत्युग में नॉर्मल जीते थे वैसे, लेकिन कलयुग के एंड पर आकर हमारी इक्वेशन ही क्या हो गई? पूरी ऑपोजिट हो गई। हमने कहा जैसी सृष्टि वैसा संकल्प, थॉट क्या था? जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। हम संकल्प बनाएंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम अ हैप्पी बींग, आई एम अ लवफुल बींग। उसके बाद हमें और क्या चाहिए लाइफ में? एनीबडी, और क्या चाहिए लाइफ में? संस्कार ये वाले चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में? नॉर्मल नॉर्मल क्या चाहिए? एनीबडी कुछ भी बोलो, क्या चाहिए लाइफ में? कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए और क्या करना चाहेंगे अपने जीवन में? क्या चाहिए? बच्चों के लिए क्या चाहिए? सेहत के लिए क्या चाहिए? फैमिली के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? वी आर गोइंग टू चेंज द थॉट। उस चाहिए को है पे कन्वर्ट करना है। क्या चाहिए? बच्चों की खुशी। तब उसको आप कन्वर्ट करें संकल्प से सिद्धि में। बच्चों को खुशी चाहिए नहीं, उसको क्या कन्वर्ट करेंगे? बच्चों को खुश रखना है नहीं, चेंज करें और हायर जाना। और है मेरे बच्चे हैं, हाँ रहे नहीं हैं। और उसमें एक और वर्ड ऐड कर दो, सदा हमेशा। नाउ इट बिकम्स नॉट अ डिजायर बट अ ब्लेसिंग। तो अपनी हर थॉट को ऐसे चेंज करना है, जो चाहते हैं कि हो हमने थॉट क्रिएट करना है वो है। और जितना हम वो थॉट क्रिएट करेंगे वो है वो है वो है वो हो जाएगा। क्योंकि लॉ क्या है? संकल्प से सिद्धि। पहले हम क्या कहते थे? हम नहीं क्षमा कर सकते उनको, बात ही इतनी बड़ी थी, कैसे क्षमा कर सकते हैं? बोलते गए क्षमा नहीं कर पाए। अब हम सिर्फ क्या कहते हैं? बहुत सहज, बात खत्म हुई, मैं आत्मा उनको क्षमा करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं पहले दिन हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ये है उस संकल्प को हर रोज बोलेंगे और जो हम बोलते जाएंगे वो होता जाएगा। तो आज आपने एक छोटी सी लिस्ट बनानी है अपने डायरी में कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं उसका फिर हम कल संकल्प बनाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं उसकी लिस्ट आपने आज बनानी है, चाहे अपनी लाइफ में, चाहे अपने वर्क में, चाहे अपने शरीर की सेहत में, चाहे कोई सिचुएशन है घर में, उसमें क्या चाहिए वो आप लिखेंगे। उसके नीचे फिर हम कल लिखेंगे कि कैसे उसकी लाइन को बनाकर हमें उसकी सिद्धि लानी है। तो अभी अपनी डायरी है आपके पास, अभी हम स्टैंडर्ड संकल्प लिखेंगे जो हमने आज से प्रैक्टिस करने शुरू करने हैं। एक बार हम वो करेंगे तो हमें उसकी वोकैबुलरी आ जाएगी कि हमें कैसे उसको करना होता है। ये संकल्पों को हम रोज रिपीट करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। एक्चुअली नहीं, इसके ऊपर एक लिख दो, आई एम अ सत्योगी सोल। मैं सत्योगी आत्मा हूं। सेकंड, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। अब शक्तिशाली आत्मा का मीनिंग क्या है? कि परिस्थिति, व्यक्ति, शरीर कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं करता, वो पावरफुल है, वो ऊपर है। जब हम कमजोर होते हैं हर बात का हम पर असर करता है। तो जितना हमारे ऊपर, ये भी अपनी चेकिंग करना कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, जितना ज्यादा आपके ऊपर आसपास का असर होता है मतलब स्ट्रेंथ कम है, जितना ज्यादा देर तक असर रहता है मतलब स्ट्रेंथ कम है। लेकिन कितना भी कम हो बढ़ाना बहुत आसान है, बढ़ाना बहुत आसान है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी बुरा लगता है किसी का, स्ट्रेंथ कम है। सो वी जस्ट हैव टू चेक कितना असर मेरे पर बाहर के जगत का होता है, उतना आई एम वीक। तो हम वीकनेस पे वर्क नहीं करेंगे, आई एम अ पावरफुल सोल। तो जैसे हमने ये संकल्प किया, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं आत्मा यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूं कि मेरा प्रभाव सब पर पड़ता है, मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। यहां हायर, सेकंड, आई एम ऑलवेज हैप्पी। शुरू में हमने क्या कहा, खुशी चाहिए, कभी नहीं बोलना है इसके बाद, बोलना मैं आत्मा सदा खुश, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तीसरा, मैं निडर, मैं निश्चिंत, डर भी नहीं और चिंता भी नहीं, आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट, मैं निडर, मैं निश्चिंत। अब एक लाइन ब्लैंक रखें, इसमें आप अपना संस्कार लिखेंगे, भले शाम रात को करना कमरे में जाने के बाद, कोई भी अपना एक संस्कार देखिएगा जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जल्दी जल्दी किसी की बात बुरी लगती है तो आप उसमें अपना लाइन लिखेंगे, मैं हर रिश्ते में अनटच्ड बाय पीपल्स बिहेवियर। ऐसा पहले तो ढूंढना है कौन सा संस्कार, और फिर उसका ऑपोजिट लिखना है। कभी कभी किसी किसी के अंदर आदत होती है अपना काम पोस्टपोन करते रहते, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे ना, बहुत टाइम है, तो वो लिखेंगे मैं अपना हर काम समय से पहले एक्यूरेटली पूरा करने वाली आत्मा। किसी के अंदर संस्कार होता है देर से पहुंचने का, वो कहेंगे मैं हमेशा समय से पहले। किसी के अंदर आदत होती है बातों को थोड़ा घुमा के फिरा के ऐसे ऐसे बोलना, तो वो अपना संस्कार संकल्प बनाएंगे, मैं सरल स्पष्ट हूं, सहज और स्पष्ट, माय एवरी थॉट इज क्लीन एंड क्लियर, घुमाना फिराना नहीं, कोई मिलावट नहीं सोच के अंदर। ऐसे अपना संस्कार ढूंढना है कौन सा चेंज करना है, और क्राइटेरिया क्या, क्यों चेंज करना है, वो बैटरी को क्या करता है, वो बैटरी को कम करता है। तो कोई भी एक संस्कार के लिए एक ब्लैंक रखेंगे वहां पे। फिर आखिरी नेक्स्ट लाइन, माय माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज, मन और शरीर संपूर्ण स्वस्थ है हमेशा, हमेशा ऑलवेज। अब उसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो, अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसके लिए एक ब्लैंक रखेंगे, और वो अपना जो हेल्थ इशू है उसके लिए एक संकल्प बनाएंगे। तो विच मीन सपोज किसी को सर्वाइकल पेन है तो वो लिखेगा मेरा स्पाइन परफेक्ट है, किसी के घुटने में दर्द है वो लिखेगा मेरा घुटने परफेक्ट, आई कैन रन। हम क्या बोलते रहते, घुटने में इतना दर्द है, मैं चल नहीं सकती, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती, बोलते 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 तथास्तु हो जाता है वो। तो संकल्प से सिद्धि मतलब तथास्तु। तो इसीलिए अगर दर्द है, चल नहीं सकते हैं, तो बोलना नहीं उसको, सिर्फ क्या बोलना, मेरे घुटने परफेक्ट हैं। लोग आके बोलेंगे बहन जी आप तो चल नहीं पाते होंगे, बोलो मैं तो भागती हूं, बस सोचते जाओ और बोलते जाओ, आपको पता ही चलेगा कब आप चलना शुरू कर देंगे। माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी माइंड को कंट्रोल नहीं करती है, माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो लिखेगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, फिगर भी लिखना। कोई भी ब्लड रिपोर्ट में अगर फिगर ठीक नहीं आता है उसका संकल्प बना देना, साथ साथ ठीक से खाना पीना भी, ऐसा नहीं खाया कुछ भी और संकल्प नहीं। जो बाहर हमें करना है वो तो हम करते हैं, हम यहां वाला नहीं करते, हमें दोनों चीजों को इकट्ठे करना होता है, ठीक है। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, हर एक मुझे स्वीकार करता है, मैं भी सबको स्वीकार करती हूं, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, एंड मेरा हर रिश्ता मजबूत है। हर एक मुझे स्वीकार करता है, मैं हर एक को स्वीकार करती हूं। एक्सेप्टेंस रिश्तों की सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार होता है। और एक लाइन जरूर लिखना, मेरा घर स्वर्ग है। कितना भी नरक हो आप रोज लिखो मेरा घर स्वर्ग है। हम कितने कलयुगी हैं, लिख रहे हैं ना मैं सत्योगी आत्मा हूं, ऐसे ही बनेंगे, मेरा घर स्वर्ग है। फिर एक संकल्प आप ब्लैंक लिखें, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। आप आने वाले समय में क्या देखते हैं अपने आप को, जो कार्य कर रहे हैं, हर एक का अलग अलग रोल पोजीशन जो भी है उसके हिसाब से आपको संकल्प करना है, ये हम कर चुके हैं, ये हम बन चुके हैं, ये हमने कर लिया, अचीवमेंट भी हो चुकी है, होनी है नहीं, हो चुकी है, देन इट विल स्टार्ट हैपनिंग। कभी भी कमी का संकल्प नहीं लाना है घर में। कभी कभी धन कम होता है, अमाउंट कम होगा, सोच में कमी नहीं आनी चाहिए। हमेशा कहना कितना है, भरपूर, इतना है कि पता नहीं करें क्या इतने पैसे का, ऐसे ऐसे बोलना होता है। हम बोलते ही ऐसे हैं यहां पर, अब कर करके हमारी वोकैबुलरी ऐसे होगी, हम नॉर्मल भी ऐसे ही बात करते हैं। पिछले वीकेंड पर हम यहां आने वाले थे तो वेडनेसडे को यहां बहुत ज्यादा गर्मी थी और थर्सडे से एक ग्रुप आना था, चार दिन उन्होंने यहां रहना था, फिर सबने वेदर फोरकास्ट देखा कि अगले चार दिन कैसे होने वाला है, वो तो बहुत ही और ही ज्यादा गर्मी थे, तो हम सबने सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट किया, चार दिन बिल्कुल प्लेजेंट वेदर। थॉट नहीं, मतलब वो भाषा हमारी वो बन जाती है, तो वो वेदर फोरकास्ट अलग दिखाता है, हम वो वाला ग्राफ यहां नहीं आने देते। ये है प्रैक्टिस। आपको डॉक्टर कुछ बोल दे, आपको वेदर फोरकास्ट कुछ बोल दे, आपको दुनिया कुछ बोल दे, आपकी सोच आपकी चॉइस है और उस चॉइस को ठीक से करना, क्योंकि आपकी सोच से दुनिया बनती है, दुनिया से सोच नहीं बनती, दुनिया से सोच नहीं बनती। संकल्प लॉ जो है ना, लॉ को पकड़ के रखना पड़ता है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। एंड एक्चुअली ब्यूटीफुल थर्सडे से संडे यहां ब्यूटीफुल वेदर था, आज भी इतना अच्छा है, आज भी इतना अच्छा है, इतना आराम से यहां बैठे हुए। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, एवरी टाइम इट वर्क्स। We only have to use the power. के जो है वो नहीं सोचना, जो होना चाहिए वो सोचना और सोच सोच के उसको बना देना है, right? तो कभी भी कमी का संकल्प नहीं करना, कहना भरपूर है हमारे पास, हमारे पास भरपूर है। जितना भरपूर बोलेंगे, जितना भरपूर बोलेंगे भरपूर होता जाएगा। अचानक से कोई बात आए बोलो सब बढ़िया है, लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे, बोलो सब बढ़िया है। और सबसे अच्छा ब्लेसिंग, ये सब लिखो अपने डायरी में, मेरे साथ जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, ये परमात्मा का वरदान है कि आपके साथ जो हो रहा है ये कल्याण के लिए आया है। तो यहां से सामने से आती है बात और हम सडनली उसको तुरंत फर्स्ट थॉट में बोलते हैं, ये हमारे कल्याण के लिए आई है। तो कौन पावरफुल हो जाता है, बात या मैं? जस्ट गो अबव द सिचुएशन। और जैसे ही ऊपर गए और आपने जो वाइब्रेशन भेजी, और अगर आप अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखें, चेक करना कि कोई बात आई थी, ऐसा लगा था दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, और कुछ महीना या साल के बाद मुड़ के बुलाओगा, वो जो हुआ ना वो सही हुआ, वो सही हुआ, अच्छा हुआ, उस टाइम ऐसे हुआ। किस किस की लाइफ में ऐसा हुआ है, हाथ उठा। अच्छा, जरा उठा के रखना एक मिनट, उठा उठा, और सब लोग जरा घूम के देखो कितना होता है ऐसा। तो बात आती है, बात ठीक हो जाती है, चली जाती है, लेकिन वो जो बीच का पीरियड होता है, हम सोच सोच के ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, सोल पावर को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। फर्स्ट थॉट में इसको सिर्फ बोलते जाना, शुरू में बिलीव नहीं होने वाला, शुरू में सिर्फ बोलना है, बोल के जब एक्सपीरियंस होगा तो थोड़े दिन के बाद वो आपका बिलीफ बन जाएगा, और जब उसको फिर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपका सत्य बन जाएगा, ट्रुथ बन जाएगा। जैसे कुछ आए बोलो, ये हमारे कल्याण के लिए आया है, ये हमारे कल्याण के लिए आया है। एंड आखिरी संकल्प जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करना है पूरा अपने बॉडी के चारों तरफ, व्हाइट लाइट एनर्जी सर्कल, परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच मींस ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी सर्कल है। इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी सर्कल में कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं एंटर होती है। सुबह घर से निकलने से पहले ये संकल्प करके ही निकलना है कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच है। कार में बैठ रहे हैं, फ्लाइट में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, उस पूरे व्हीकल के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दो। करते जाओ, बार बार करते जाओ। बच्चों की चिंता नहीं करना, फटाफट बच्चे याद आए, मेरे बच्चों के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच है। वो देश के एक कोने में होंगे, आप देश के दूसरे कोने में होंगे, आप अपने संकल्प से उनको सुरक्षित कर देंगे। एक होता है चिंता की एनर्जी भेजना और दूसरा होता है हाईएस्ट वाइब्रेशन और ब्लेसिंग भेजना। क्या दुआएं काम करती हैं? क्या दुआएं काम करती हैं? हाँ, दुआएं असंभव को संभव करती हैं। तो फिर चिंता क्या करेगी? चिंता ऑपोजिट कर देगी। चिंता और दुआ इज लाइक अ ब्लेसिंग जो गिरते हुए को भी पकड़ लेगी, और चिंता इज द ऑपोजिट जो ठीक ठाक भी चल रहा था उसको भी गिरा देगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं ना, वरी की एनर्जी भेज रहे हैं, तो हमें गिरते हुए को भी उठाना है। और वो कैसे करना है? सिर्फ यहाँ की थॉट से। अब ये हमने संकल्प लिख लिए, अब आपकी लाइफ का अगर कोई सिचुएशन होगा जिसको आपको चेंज करना है, देन आपको उसका संकल्प बनाना है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चाहते हैं कि हो वो लिखना है, वो हो चुका है। अब करना कब है? एक, रात को सोने से पहले। ये वाली जो डायरी आपको यहां मिली है, इसको सिर्फ इसी के लिए यूज करना, इसमें कोई और हिसाब किताब ना लिख देना। ये डायरी उस और चीजों के लिए नहीं है। इस डायरी को घर जाने के बाद वापस अपने पिलो के पास ही रखना। रोज रात को सोने से पहले इसमें ये संकल्पों को फिर से लिखना, क्योंकि रात को सोने से पहले जो आखिरी थॉट्स होते हैं ना, वो पूरी रात हमारे काम करते हैं। सुबह उठते ही इसको बोलते बोलते उठना, तो फर्स्ट थॉट भी कैसे हो जाएगी? हाईएस्ट वाइब्रेशन हो जाएगी। तो एक हुआ रात को सोने से पहले, एक हुआ सुबह उठते ही। फिर हर रोज सुबह हम क्या करेंगे? जो मेडिटेशन हम सीख रहे हैं। कौन कौन 4 बजे उठ रहा है सुबह रोज? अच्छा, कल भी उठेंगे संडे को? वेरी गुड। मंडे को भी उठेंगे? उठेंगे। ट्यूजडे को उठेंगे? फिर वेडनेसडे को उठेंगे? उठेंगे। रोज उठेंगे? उठेंगे। इसको अपना संस्कार बना लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है ना? तो सुबह उठकर मेडिटेशन एक करेंगे, और दूसरी चीज, थोड़ा दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य स्टडी करके करना है। कंटेंट से सोच बनती है, तो ये डायरी सिर्फ उसी के लिए है। ज्ञान की बातें लिखनी है, अपने संकल्प अफर्मेशंस लिखने हैं, ये इसमें सिर्फ वही लिखना है। तो एक हुआ रात को सोने से पहले, दूसरा हुआ सुबह उठते ही, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाने से पहले। तो अभी जब हम भोजन पर जाएंगे, आप थाली भरेंगे, थाली अपने पास आएगी, ऐसे ही खाना नहीं शुरू करना है। 5 सेकंड रुकना है, खाने को देखना है, परमात्मा को याद करना है, और वो शक्ति अंदर जा रही है खाने में, और साथ साथ संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। जो 5-6 संकल्प बना लो, हर खाने में बोलने हैं। इजी कर सकते हैं। और फास्ट उसको सिद्ध करना है, तो पानी की वाइब्रेशन को चेंज करो। पानी के साथ जरूर संकल्प करने चाहिए, क्योंकि वाटर की अब्सॉर्प्शन पावर वाइब्रेशन के लिए हाईएस्ट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते थे, हमेशा पानी ऐसे लेते हैं, उसमें मंत्र बोलते हैं, फिर उसको ऐसे डालते हैं, फिर घर में डालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पानी से शुद्धिकरण कर रहे हैं, पानी से शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्यों पानी से शुद्धिकरण करते हैं? क्योंकि पानी हाईएस्ट वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करता है। अब जो हम पानी पीते हैं, उसके लिए क्या कहा जाता है? जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा मन। अब ये अन्न और पानी कहां से आ रहा है? कलयुग से आ रहा है। इसलिए कहते हैं, कौन से शहर का पानी पीते हो? तो इस समय हम कलयुग का पानी पीते हैं। अब अगर कलयुग का पानी पीते रहेंगे तो क्या बनते जाएंगे? कलयुगी बनते जाएंगे। हमें क्या बनना है? सत्ययुगी। तो हम कलयुग का पानी को कन्वर्ट करके फिर पीते हैं, ऐसे नहीं पीते कभी भी। कलयुग का पानी मतलब शहर में डर है, चिंता है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, दैट्स द वाइब्रेशन ऑफ द वॉटर। वो पानी की वाइब्रेशन है। हमने अगर उसको उठा के ऐसे ही पी लिया, तो अभी तक हम सोच रहे थे कि मुझे गुस्सा नहीं करना नहीं करना, पानी पी लो गुस्सा आ जाएगा आधे घंटे के बाद। बोलो मैंने तो डिसाइड किया था नहीं करना, फिर आ गया वाटर। तो वाटर एंड फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पकड़े ग्लास पानी का ऐसे हाथ में, हाँ कभी पानी नहीं पीना ऐसे। और जब आप दूर दूर देश के दूर दूर कोनों में हो ना अपने अपनी सेवा पे, तब तो बिल्कुल नहीं पीना ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। उसको आपको एनर्जाइज करके ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वायुमंडल वातावरण वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट होते हैं उस समय। अगर हमारे को मन की स्थिति को बिल्कुल एकाग्र एक स्थिर रखना है, हमें पानी को एनर्जाइज करे बिना बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो पकड़े हाथ में ग्लास, अब देखते हुए पानी को हम कहेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सत्युगी आत्मा हूं, मैं निडर और निश्चिंत हूं, संपूर्ण स्वस्थ हूं और परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच। 5 lines, 5 seconds, only 5 seconds। जैसे हम हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? क्यों हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएंगे? जर्म्स है ना, इसमें भी जर्म्स है। वो होती है फिजिकल जर्म्स, ये होती है इमोशनल वायरस। वो पानी कहाँ था, वहां के रूम में कौन सी बातें चल रही थी, वहां का वायुमंडल क्या था, वो सब पानी की वाइब्रेशन है। खाना किसने बनाया, किस स्थिति में बनाया, सब्जी कहाँ से आई, सब्जी उगाने वाले की स्थिति क्या, सब कुछ उस खाने की वाइब्रेशन होती है। यहाँ आपको पीसफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ खाना बनाने की एक विधि है। ऐसे ही नहीं खाना बनता, यहाँ पे खाना सिर्फ वो ही लोग बना सकते हैं जो रोज एक्यूरेट मेडिटेशन करते हैं। वो कितने भी हजारों लोग आ जाएं, आपने परसों देखा था ना नीचे का कैंपस, उसमें 25-30,000 लोग होते हैं एट अ टाइम। कितने भी आ जाएं, खाना वो ही बनाएंगे जो एक्यूरेट मेडिटेशन करते हैं और ये लाइफस्टाइल लीड करते हैं। खाना बनाने के टाइम इधर उधर की कोई बात करना अलाउड नहीं है, चाहे सुबह से रात तक खाना बन रहा है, इधर उधर की बात करना कोई अलाउड नहीं है। मतलब कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी नहीं, नेगेटिव तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी नहीं, क्योंकि खाना बन रहा है। और फिर परमात्मा को याद करते हुए आप सब ये करिएगा, जाने के बाद अपने रसोई में जरूर ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, फोन या म्यूजिक सिस्टम रखें जिससे रसोई में हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए। जैसे मंदिर गुरुद्वारे में कैसे चलते हैं, भजन चले, मंत्र चले, इतने अच्छे अच्छे गीत आप यहाँ पे सुन रहे हैं, इसको ले जाओ, ये सब ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं अब तो। चलना चाहिए घर के अंदर रसोई में, जिसने रसोई की वाइब्रेशन को चेंज किया उसने परिवार के मन को चेंज कर दिया, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा भाग्य, भाग्य बदल जाता है रसोई से भाग्य। और बाकी सब लोग जो ड्यूटी पर हैं, आपको तो वहां पे खाना है ठीक है, लेकिन आप वहां पे भी जाके ऐसा कुछ रखवा सकते हैं अपने लिए। बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, अन्न प्रसाद बन जाता है और सब कुछ हो गया। लेकिन जब अपने सामने आ जाए खाना, 5 सेकंड रुक के ऐसे ही खाना कभी नहीं खाना, कभी खाना नहीं खाना ऐसे। 5 सेकंड रुक कर परमात्मा को याद करके अपने संकल्प खाने में, तो क्या हुआ, अन्न ने वो शब्दों को अब्सॉर्ब किया, फिर जैसा मन है, जैसा अन्न है वैसा मन हुआ, तो संकल्प से सिद्धि और इजी हो जाएगी। तो कब कब हो गया, रात को, सुबह 3 बार खाना और 4-5 बार पानी, 8-10 बार रिपीट हो गया दिन में। हो ही नहीं सकता कि सिद्धि ना हो, हो ही नहीं सकता। आप असंभव को संभव करिए, मिरेकल्स क्रिएट कीजिए, लेकिन ये मिरेकल नहीं, ये जस्ट पावर ऑफ द माइंड है। तो जब भी दुनिया में कोई पावर ऑफ द माइंड को यूज करता है, दुनिया उसको मिरेकल कहती है। तो मिरेकल एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, एक नॉर्मल वे ऑफ बीइंग। तो अभी रात को भोजन खाने से पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, 5 सेकंड। शुरू शुरू में भूल जाएगा, जब याद आए रुक कर लेना, आधी प्लेट खत्म हो गई हो तो भी रुक के कर लेना। 4-5 दिन करेंगे, वो बन जाएगा हमारा संस्कार, वापस जाके वो बन जाएगी हमारी नेचर। अन्न और पानी का बहुत असर है मन के ऊपर, तो इसीलिए उसका अटेंशन रखेंगे। इजी, सहज, कितना सहज, कितना सहज, लैंग्वेज ध्यान रखना कितना इजी है, बहुत इजी है। वापस जाओगे कोई बोलेगा ऐसे थोड़ी हो तो बोलो बहुत इजी है। सिर्फ शब्दों का ध्यान रखना, जिसने कहा ओ इतना कैसे होगा, कम तथास्तु। तथास्तु का मीनिंग ही यही था कि आप जो सोचेंगे जो बोलेंगे वही होगा। आपके पास पावर है, आप किस चीज को अपने जीवन में तथास्तु करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ भी रिश्ते में गांठ है, उनके नाम से संकल्प बना दो, इनका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत मजबूत है। किसी को फॉरगिव करना है, संकल्प में डाल दो कि पास्ट इज पास्ट, आई फॉरगिव। थोड़े दिन के लिए इसको करना है और फिर आपको उसका अनुभव होने लगेगा ना, तो आप कभी भी इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी थॉट्स को कैसे रखता है बिल्कुल। फिर थोड़े टाइम बाद वो 10 संकल्प नहीं, वो हमारी नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग बन जाता है। हर चीज में वैसा सोचते हैं। चले सीधा होकर बैठेंगे, अब अटेंशन को लेकर आए सेंटर ऑफ द फोरहेड। और देखें अपने आप को, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा एनर्जी, चमकता हुआ सितारा, जैसे आकाश में सितारे होते हैं ना, वैसे देखना है ब्रिकुटी के बीच। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, आप जो संकल्प सुनेंगे उसको मन में रिपीट करिएगा, और एक ही संकल्प को रिपीट करके उसको होल्ड करेंगे। मैं आत्मा सत्युग की आत्मा हूं, मैं सत्युग की आत्मा हूं, इसको फील करें। मैं सत्युग की आत्मा हूं, डिवाइन, सृष्टि को बनाने वाले, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने वाली, मैं सत्योगी आत्मा हूं। सबको देने वाली, अपने सर के थोड़ा सा ऊपर विजुअलाइज करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं, जैसे सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं, इसी तरह से हमें देखना है सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। और मुझ आत्मा से ये सर्व शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रहे हैं। देखें सेंटर ऑफ द फोरहेड से एनर्जी वाइब्रेशन पूरे शरीर में वाइब्रेट करती है। आत्मा से ये शक्तियां पूरे विश्व में फैल रही है। इसको देखें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड वो किरणें निकलकर पूरी सृष्टि पर फैल रही है। सत्युग है, भारत स्वर्णिम भारत है। आत्मा से निकलती हुई शक्तियां विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराती है। अब इसी स्थिति में जब हम उठेंगे चलेंगे भोजन के लिए डाइनिंग हॉल तक जाएंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस यही रहनी चाहिए, मैं सत्योगी आत्मा, मैं देवता ही संस्कारों वाली आत्मा। अगर आप इस थॉट को क्रिएट करते हुए चलेंगे, आपका चलने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसा हाल होता है वैसी ही चाल होती है। स्थिति बदलेगी, चलने का तरीका बदलेगा, थाली उठाने का तरीका बदलेगा, फिर जब भोजन सामने आएगा 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, परमात्मा को याद करके उनकी शक्तियां उस भोजन में भरते हुए अपने संकल्पों को दोहराएंगे। और आज का भोजन हम्बल को मौन में करेंगे। पूरे डाइनिंग हॉल में लगेगा ही नहीं कि कोई है, एकदम साइलेंस। आज साइलेंस में भोजन करके देखते हैं, वो मन और तन दोनों के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। बिल्कुल साइलेंस में हाथ उठाएं, कौन कौन कर सकता है बिल्कुल मौन में भोजन? ब्यूटीफुल, हर एक कर सकता है। जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे ही उठिएगा, सारे इकट्ठे नहीं उठेंगे, सबसे पीछे की दो लाइन उठेंगे, सबसे पीछे की दो लाइन उठेंगे और सबसे आगे की दो लाइन उठेंगे।